वासुदेवाय नारद श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 31वां अध्याय जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक क्रमांक 6। कृमिभिः क्षतम् सर्वांगः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छाम् आप्नोति क्लेशः। क्षमा कीजिए, उरु क्लेशः तत्रत्यैः क्षुदितैः मुहुः। कृमिभिः क्षत सर्वांगः सौकुमार्या प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशः तत्रत्यः क्षुधितैर्मुहुः। कीड़ों द्वारा क्षत काटे जाने पर सर्व अंगः पूरे शरीर में सौकुमार्यात् सुकुमार होने के कारण प्रतिक्षणम् क्षण क्षण मूर्छाम् अचेत अवस्था को आप नोते प्राप्त करता है। उरुक्लेशः महान कष्ट तत्रत्यैः वहां उदर में रहकर क्षुधितैः भूख से मुहुः पुनः पुनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तात्पर्य, इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से निकलने पर ही नहीं अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद स्थिति उसी समय से प्रारंभ होती है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर ठीक से विचार नहीं करते। अतः भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतरण करना होता है और जब कुत्तों तथा सुअरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्ट प्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथा कथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अनुवाद दोहराइए। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। कृमिभिः क्षत सर्वांगः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छाम् आप्नोति रुक्लेशस् तत्रत्यै क्षुदितैर् मुहो। तो यहाँ पे कपिल देव उस स्थिति या उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिसका हमें सब को अनुभव है, लेकिन जिस अनुभव को हम भूल चुके हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जिसने संसार में जन्म लिया है उसने ये स्थिति का अनुभव किया है और बहुत बार किया है, बारंबार किया है। जितने जन्म हमने ये संसार में लिए हैं उतनी बार हमने ये अनुभव किया है, और कितनी बार हमने जन्म लिया है इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई गिनती नहीं है। अनादिकाल से हम ये संसार में भटक रहे हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, और हर एक बार हमें नई माता के गर्भ में जाना पड़ता है। फिर से वही बात, बारंबार जन्म लेना। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हमारा कोई पिछला जन्म था भी तो हमें याद क्यों नहीं आता, हमें स्मरण शक्ति क्यों खो जाती है, ये कैसे है कि पिछले जन्म के बारे में हमें याद नहीं हो रहा है। तो हम इसके लिए बहुत साधारण जवाब दे सकते हैं कि मां के गर्भ में जो आपने अनुभव किया क्या वो याद कर सकते हैं, वो इसी जन्म की बात है। मां के गर्भ में जो अनुभव किया वो याद नहीं कर सकते, तो उसके पहले जो हुआ उसको कैसे याद कर सकते हैं। मां के गर्भ की बात तो दूर है, बचपन में जो हमने किया एक साल की उम्र में, दो साल की उम्र में, वो क्या सारी चीजें हमें याद है, वो बात तो दूर है। पांच मिनट हमने चाबी कहाँ रखी कभी कभी वो भी भूल जाते हैं, तो पिछले जन्म की बात हम कैसे याद रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में जीव तटस्थ शक्ति होने के वजह से वो भूल जाता है, भुलावा या विस्मृति जीव का एक गुण है। जीव किसी भी वक्त भूल सकता है, इसलिए तो हमारा पतन ये संसार में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हम यहां पर चले आए हैं, और यहां आकर बारंबार हर जन्म में विस्मृति होती रहती है, विस्मृति कृष्ण की, और ये मूल विस्मृति है। और इस मूल विस्मृति की वजह से अन्य सारी विस्मृतियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो यहां पर उस स्थिति का वर्णन है जो हम फिर से अनुभव नहीं करना चाहते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि किस प्रकार से जीव बच्चा जो है वो प्रार्थना करेगा भगवान से कि मुझे बचाइए। यहां पे बहुत डिटेल में वर्णन है कि एक बार जीव मां के गर्भ में प्रवेश कर लेता है तो उसके शरीर का विकास कैसे होता है। जो डॉक्टर समाज है उनके बीच में ये ज्ञान को फैलाना चाहिए, ये भागवत के इस अध्याय को पढ़ाना चाहिए, ताकि सारे मेडिकल जो समाज है वो समझ ले कि हमारे शास्त्रों में क्या ज्ञान दिया हुआ है। आजकल विज्ञान के हिसाब से वो पता कर सकते हैं कि माँ के गर्भ में क्या हो रहा है, बच्चे का उसके शरीर का विकास कैसे हो रहा है, लेकिन उस जमाने में तो ऐसे यंत्र नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने डिटेल में स्पष्ट रूप से ये कैसे बताया है कि किस महीने में क्या होता है, कब आंख निकलते हैं, कब कान बढ़ते हैं, कब हाथ उंगलियां आती हैं, कब शरीर कितना बड़ा होता है, सब कुछ बताया हुआ है शुरू से जन्म के समय तक। तो ये है शब्द ब्रह्म। ये जो बातें हमें श्रीमद् भागवत में बताई गई हैं, ये किसी भी एक साधारण व्यक्ति की काल्पनिक चीजें नहीं है। ये वो बातें हैं जो साक्षात भगवान ने ऋषि मुनियों के हृदय में प्रकाशित की हैं। जो ऋषि मुनि हृदय से शुद्ध हैं, निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय में कोई मात्सर्य नहीं है, ऐसे ऋषियों के हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश हुआ है, इस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं श्रीमद् भागवत में और अन्य शास्त्रों में। और यहां तो साक्षात भगवान बोल रहे हैं, कपिल देव। कपिल देव तो भगवान के अवतार माने जाते हैं और खुद भगवान बोल रहे हैं, तो इसमें कोई त्रुटि या गलती नहीं हो सकती है। इसलिए इस चीज को हमें जैसे है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसे छोटे उम्र में भी बच्चा दुख के कारण बहुत पीड़ित हो जाता है। उसे कोने कोने में हर जगह मां के गर्भ में जो कीड़े हैं वो काटते हैं। तो देखिए आजकल के समाज में ये गर्भपात को जो आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें भी ये पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि वो क्या चीज कर रहे हैं, कितनी बड़ी वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। यह स्पष्ट बताया जाता है कि छोटे से कीड़े को भी काटने से बच्चे को कितना दर्द होता है, और गर्भपात की जो पद्धति होती है वो तो बहुत नरकीय होती है। इतना हिंसा होता है गर्भपात में कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ डॉक्टर बांदुर के बैठे हैं, डॉक्टर आप अच्छी तरह से हमें बता पाएंगे कि गर्भपात में क्या होता है। संक्षेप में हमने अभी अभी एक किताब पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, इसमें ये बताते हैं कि गर्भपात में क्या होता है, अलग अलग तरीके क्या होते हैं गर्भपात के। आप सुनेंगे और ये ज्ञान को फैलाएंगे तो जो लोग गर्भपात कर रहे हैं वो लोग बंद करेंगे और ये ज्ञान सब जगह फैल जाएगा। प्रभुपाद बताया करते थे कि समाज में आजकल हिंसा बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है, प्रेम भाईचारे की भावना कम हो रही है। क्यों? इसीलिए कि हम लोग दो चीजें मुख्य रूप से कर रहे हैं, एक है पशु हत्या अर्थात मांसाहार, और दूसरा है गर्भपात। ये दो चीजें हम करते हैं, बड़ी हिंसा करते हैं, इसलिए सारा समाज नरक की ओर जा रहा है। तो गर्भपात करने का एक तरीका होता है, वो अंदर सक्शन पंप लगाते हैं मां के गर्भ में, और सक्शन पंप से जो है वो काट कर फिर वो गर्भ से बच्चा है उसको खींच लेते हैं, और बच्चा जब पंप के उस ओर आता है तो बच्चे के टुकड़े 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 आ जाते हैं। हमें ये सब जानना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से दूसरों को भी समझा सकें कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं लोग। लोग ये नहीं समझते हैं कि कितना हिंसा, कितना दुख हम कष्ट देते हैं बच्चे को, उसके काट बोटी बोटी ऐसे बोलते हैं, काट काट कर वो टुकड़े हो जाते हैं। और ऐसे भी एक तरीके हैं जो अंदर माँ के गर्भ में जाके वो काटते हैं बच्चे को, काट कर फिर और खींच लेते हैं। ऐसे तरीके हैं सब, कई तरीके हैं, उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, DNC और वगैरह वगैरह नाम दिए जाते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से गौर से पढ़ेंगे तो आप समझिए कि कितना अज्ञान है, कितनी क्रूरता है, और लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि माताएं ऐसे बोल रहे हैं आजकल पश्चिम देशों में विशेषतः, और ये भावना अभी भारतवर्ष में भी धीरे धीरे आ रही है कि ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। पहली बात यह है कि ये झूठ है, ये आपका शरीर नहीं है, ये कृष्ण का शरीर है, इसलिए आप इस शरीर के ऊपर आपका सीमित हद तक आपका अधिकार है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा आपके गर्भ में है वो आपके शरीर के भीतर होते हुए भी आपका अधिकार उस पर नहीं जमता, उसका प्राण लेने या उसके उसको खत्म करने की जो का जो अधिकार है वो आपके पास नहीं है, वो केवल भगवान के पास होता है। इसलिए आप ऐसे बच्चे की हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा भी आपका नहीं है, बच्चा भगवान का है, आपके गर्भ में आया है, आपके शरण में है, आपके आश्रय में है, लेकिन आपका नहीं है। ये गलत फहमी है सबको। अगर बच्चा गर्भ में है और आप कहते हैं कि आप उसकी हत्या कर सकते हैं क्योंकि वो गर्भ के अंदर है, तो क्या गर्भ के बाहर जब बच्चा होगा उसकी हत्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। ये कल्पना कीजिए कि बच्चा माँ के गर्भ में है, एक क्षण पहले है, और जन्म लेने के बाद वो माँ के गर्भ के बाहर है। तो माँ के गर्भ के बाहर जब बच्चा आएगा तो क्या माताएं उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? कहेंगे ये तो जीवित बच्चा है। लेकिन पेट के भीतर, गर्भ के भीतर भी तो जीवित बच्चा है, पहले क्षण से ही वो तो जीवित है। कभी भी ऐसा समय नहीं था जब बच्चा जीवित नहीं था। कई बार यहां भारतवर्ष में भी हमने कई लोगों से हम मिले हैं जो कहते हैं वो सोनोग्राफी और सोनोग्राफी नहीं और क्या वो कहते हैं एमनियोसिंथेसिस, अलग अलग चीजें होती पद्धति और नाम देते हैं उनको, जिससे वो पता करते हैं कि माँ के गर्भ में क्या स्थिति है, बच्चे की क्या स्थिति है, वो बच्चा लड़का होगा लड़की होगी क्या होगा सब पता करते हैं। और ये भी पता चलता है कि बच्चे के भीतर कोई बीमारी है या कोई ऐसा दोष है, शारीरिक दोष, मानसिक दोष, ऐसा कुछ है, तो फिर वो गर्भपात कर देते हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर जन्म लेने के बाद किसी बच्चे को ऐसा मानसिक या शारीरिक दोष हो जाता तो क्या माता पिता उसकी हत्या करते? मानिए कि एक महीने का बच्चा है और अचानक उसको कोई बीमारी हो गई और बीमारी की वजह से कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे कि हमेशा जीवन भर के लिए उसको ये बीमारी हो जाए, तो क्या उसकी हत्या करेंगे? अगर बाहर गर्भ के बाहर उसकी हत्या नहीं करेंगे तो गर्भ के भीतर क्यों हत्या करनी है? क्या वो बालक नहीं है? वही तो बालक है, बालक तो वही है, पहले गर्भ के भीतर था अभी गर्भ के बाहर है, बस इतना ही फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है। और क्योंकि वो गर्भ के अंदर है, ये कौन सी अलग परिस्थिति हो जाती है जिसकी वजह से हमें उसकी जान लेने की हमें अधिकार मिल जाता है? ऐसे कई तर्क वितर्क करते हैं लोग। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है इस महिला के ऊपर बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, और इसलिए समाज की दृष्टि से जो कलंक लगा है इसके चरित्र पर, उसको हमें बचाने के लिए हमें गर्भपात करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये तो हमारी सामाजिक समस्या है। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि हमने हमारे लोगों को इतना दिव्य ज्ञान नहीं दिया है, इंद्रिय संयम करने के लिए शिक्षण नहीं दिया है, और इसलिए ये सब बलात्कार हो रहे हैं। आप बड़े बड़े सिनेमा दिखाते हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर दिखाते हैं, ऐसे छवि सब सड़कों पर लगाते हैं, लोगों को आप उत्तेजित करते हैं, और बलात्कार होते हैं तो कहते हैं कि बच्चे को मारो, बच्चे की हत्या कर दो। इसमें कहिए कि बच्चे का क्या कसूर है? अभी बलात्कार किसी और ने किया है, किसी और पे किया है, तो बच्चे का इसमें क्या स्थान है? मान लीजिए हमने इनके ऊपर कोई हत्या की, तो तीसरे व्यक्ति को मारने का क्या मतलब है? कोई मतलब है इसका? तो एक पुरुष ने एक महिला के ऊपर बलात्कार किया है तो बच्चे की हत्या क्यों करनी है? देखिए इनका लॉजिक जो है कितना टेढ़ा मेढ़ा है। हमें उनको प्रचार करने से हर एक पॉइंट जो बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट उनको हमें जवाब देना चाहिए। हर एक बात जो कहते हैं उनको सही तरह से लॉजिक से, इनके लिए भगवान भगवान की बात ही नहीं करनी है। भगवान तो ऐसे लोगों के लिए बहुत दूर है, भगवान की बात तो बहुत बाद में आएगी। उनको केवल लॉजिक तर्क से उनको समझाना है कैसे आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बकवास है, पॉइंट टू पॉइंट। तो बच्चे का कोई कसूर नहीं है तो बच्चे को हमें क्यों मारना चाहिए? और अगर ऐसे है कि कोई महिला गलती से कोई गर्भ निरोधक कोई पदार्थ जो काम नहीं करता इसलिए बच्चे की हत्या करते हैं, आजकल फैमिली प्लानिंग चल रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि भारतवर्ष में 11 मिलियन मिलियन यानी कितने हुए, 110 लाख, 1,10,00,000 गर्भपात होते हैं हर साल। कल्पना कीजिए, हर साल 1,10,00,000, तो कितना पाप हो रहा है आप समझिए। तो कहते हैं कि गर्भ निरोधक जो दवा काम नहीं की, इसलिए हम हत्या करेंगे। तो हम हमारी इंद्रियों को काबू में नहीं रख सके, इसलिए बच्चों की हत्या करेंगे। बच्चे का क्या कसूर है? क्या बच्चे का कोई जीने का अधिकार नहीं है? जितना अधिकार आपको जीने का है, उतना ही अधिकार बच्चे को जीने का है। बच्चे का भी हक होता है। आजकल कानून के दृष्टि से बच्चे को कोई अधिकार नहीं दिया जाता, जन्म के बाद ही उसे व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये ठीक नहीं है। बचपन जब से वो मां के गर्भ में आता है, तब से उसको जीने का अधिकार माना जाता है। वास्तव में हमारे कानून के हिसाब से भी इंडियन पीनल कोड जो है, जो ब्रिटिश राज में बनाया गया था, वो बहुत अच्छा कानून था, क्योंकि उसमें साफ साफ बताया जाता है कि जब से मां के गर्भ में बच्चा आता है, उस समय से वो एक मनुष्य है, व्यक्ति है, और उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल भारत सरकार ने नए कानून बनाया है, उसको MTP एक्ट कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब लोग ऐसे करते हैं कि चाहे अबॉर्शन शब्द, गर्भपात, इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, जिससे ये बात को हमें समझ में नहीं आया कि कितने क्रूर कार्य है ये। जैसे हम कहेंगे कि बच्चे की हत्या हो रही है, कहेंगे नहीं नहीं बच्चे की हत्या नहीं है, मेडिकल दृष्टि से जो है वो गर्भ में इसको बंद किया जा रहा है, टर्मिनेशन को क्या कहते हैं, रोक दिया जा रहा है इसको, बस। मतलब ऐसे मृत्यु, हत्या, उसको काटना, बोटी बोटी करके काटना, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो सत्य को पब्लिक के सामने रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए एक ऐसा मेडिकल, ऐसा लंबे लंबे चौड़े चौड़े शब्द इस्तेमाल करेंगे जिससे किसी को समझ ना आए, और बड़ा MTP कर देंगे, MTP हम नहीं करते हैं, ताकि सब लोग समझेंगे कि ये कोई एक कोई मेडिकल कार्य है, कोई इसमें खराबी नहीं है, हम जो कर रहे हैं सो ठीक ही है। जिस प्रकार से जो मांस खाते हैं लोग, आप देखेंगे कि जब होटल में प्लेट के ऊपर आता है तो अच्छी तरह से मसाला डाल वाल कर सब करके आता है, और जो खाता है उसे कभी ये नहीं लगता कि कैसे ये मेरे टेबल पे आ पहुंचा है, इसके पहले पशु को क्या हुआ, किस प्रकार से उसकी हत्या की गई, कितना दर्द उसको हुआ, क्या परिस्थिति हुई, और किस कर्म का फल मैं भी खा रहा हूं। ये अच्छी तरह से पैक करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और पैकिंग वैकिंग सब अच्छा होता है, हम सोचते हैं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं। उसी प्रकार से हमारे सारे समाज में, आजकल आधुनिक समाज में, आंखों पे धूल डालने की बात है। सत्य से आंख बंद करो, और मीठी मीठी बातें कहकर उसी चीज को सबको दिया जा रहा है। और जो सत्य कहते हैं कि ये लोग सब पुराने पुराने फैशन वाले हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, ये आजकल ये देश का विकास नहीं चाहते हैं, लेकिन सच्ची बात को ये खुद नहीं मान रहे हैं। हर स्थिति में यहां कितने स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि बच्चे की क्या अवस्था होती है, ये कॉमन सेंस की बात है, कोई शास्त्र के जाने की भी बात नहीं है, ये कोई मेडिकल बात भी नहीं। कोई भी जान सकता है कि बच्चा अगर जन्म ले रहा है और जीवित बच्चा है, तो ये 9 महीने से उसका विकास हो रहा है, तो कैसे अधिकार हमें होता है कि ये बच्चे की हत्या करने की। और कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है कि अमुक महीने के पहले, 3 महीने 4 महीने पता नहीं, ऐसा कोई कानून है, इसके पहले गर्भपात करेंगे तो ये कानून के भीतर है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस महीने के बाद में करेंगे, 4th महीने के बाद या 3rd महीने के बाद जो भी हो, तो इसके बाद ये एक कानून के खिलाफ हो जाता है, ये खून कहलाता है, मर्डर, इसके पहले नहीं। इसका क्या मतलब, देखिए कितनी मूर्खता है, कितनी अति मूर्खता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा समय है मां के गर्भ में जिससे अचानक बच्चा मनुष्य बन जाता है, उसके पहले आप मारेंगे तो वो खून नहीं है, उसके बाद में मारेंगे तो खून है। आज वो कहेंगे कि 3 महीने के बाद मारोगे तो खून है, और कल कानून बदल के कहेंगे नहीं नहीं 4 महीने के बाद मारोगे तो खून है। तो इसका मतलब है कि गर्भ में जो बच्चा है वो हाईकोर्ट की बात सुन रहा है कि कब मैं जन्म लूंगा, कब मैं मनुष्य बनूंगा, 3 महीने के बाद मुझे जीवित होना है या 4 महीने के बाद मुझे अचानक जीवित हो जाना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बताया है कि 3 महीने के पहले जो हत्या होगी वो ठीक है, इसलिए 3 महीने तक मुझे जीवित नहीं होना है, फिर 3 महीने के बाद अचानक मैं मनुष्य बन जाऊंगा। कितनी मूर्खता की बात है। देखिए, इसलिए लोग अंधकार में, इसको कहते हैं घोर अंधकार। मतलब इतनी सरल सी बात है जो बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेता और जो समाज तथाकथित समाज सेवक है, इस साधारण बात को भी नहीं समझ सकते हैं। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि हृदय इतना क्रूर हो चुका है, क्योंकि इतने स्वार्थी हम बन गए हैं, भगवान को इतने भूल चुके हैं, कृष्ण भावना से इतने दूर हो चुके हैं कि सरल सी बात भी हम समझ नहीं सकते। पश्यन अपि न पश्यति, कि हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, जो चीजें हमारे आंखों के सामने हैं उसको भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हमें जानना है कि बच्चा जो मां के गर्भ में होता है वो जीवित है, हर स्थिति में जीवित है। गर्भपात केवल एक अवस्था में किया जा सकता है, जब बच्चा प्राय गर्भ में ऑलरेडी मर चुका है, अपने आप मर चुका है, तब फिर निकालने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि पहले से वो मृत एक शरीर है हम निकाल रहे हैं। तो इसीलिए ये अज्ञान जो समाज में फैला हुआ, इतना पाप हो रहा है और इस पाप की वजह से इसका प्रतिकार अवश्य होगा और हो रहा है। हम देखते हैं, हमारा बंबई में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, वहां पे एक डॉक्टर हैं, वो भगवद गीता क्लास में आया करते थे, और वो सारे विश्व भर में गर्भपात करने में स्पेशलिस्ट हैं। उनके कई अलग अलग टेक्निक है जो उनके नाम के बाद में उनके नाम से जानी जाती हैं। उन्हें नया संशोधन करके ये गर्भपात के लिए नए जो तरीके हैं वो ढूंढ निकाले हैं, जो शॉर्टकट तरीके हैं, और ऐसे कई साल से करते थे, प्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में जो एसोसिएशन है इनका, इनके कोई वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है। तो धीरे 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 से उनको पता चला कि क्या हो रहा, वो क्या कर रहे हैं। उनको बहुत कष्ट हुआ छोड़ने में, लेकिन आके छोड़ दिया। और उनके सारा डॉक्टर समाज है उनका मजाक उड़ाता है, जहां भी वो मीटिंग में जाते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का जो बॉडी है, वो उनको इनवाइट करते हैं, वहां यहां वहां विदेश में जाते हैं, और उनको कमेटी हेड करने के लिए, कमेटी का आप चेयरमैन बनिए, वहां वहां मतलब बहुत प्रसिद्ध है। और अब जहां भी जाते हैं तो गर्भपात की बात आते हैं तो कहते हैं हम इसमें नहीं ले सकते। तो लोग कहते हैं आप पागल हो गए हैं, ये देखो देश में गरीबी कितनी है। वो कहते हैं कि तो ये कारण सबसे ज्यादा होती है, क्या है कि माता पिता गरीब हैं और एक बच्चे को बाहर लाएंगे कैसे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन ये नहीं समझते कि आपने बच्चे को लाया क्यों, जन्म क्यों दिया आपने, आपको जन्म ही नहीं देना चाहिए था। आपकी गरीबी की अवस्था है, आपको मालूम है कि आप बच्चे का देखभाल नहीं कर सकते, फिर क्यों बच्चे को जन्म दिया आपने, आपकी गलती है। आपकी गलती की वजह से बच्चे की हत्या करना, क्या ये ठीक है? और कहते हैं कि ये देश का विकास हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों की ये आबादी बढ़ रही है, ये जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमें समाज सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, इसलिए मासूम बच्चों की हत्या करनी है, 1,10,00,000 बच्चों की हत्या करनी है, ये हमारा लॉजिक है। तो उन्होंने बंद कर दिया, अभी सब जगह जाके लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो अटल है। अभी कहते हम अभी हिलेंगे नहीं, और सब जगह जाके लोगों को बताते हैं कि अब ये ठीक नहीं है। और एक पिक्चर हमने उनको दिखाया, वीडियो पिक्चर जो अमेरिका में बना था, जिसमें ये बताया जाता है कि माँ के गर्भ में कैमरा डालकर ये दिखा गया था कि बच्चे की क्या हालत होती है। जब गर्भपात होता है तो बच्चा किस प्रकार से पीछे चले जाता है, बच्चे को पता चलता है कि छुरी आ रही मुझे बोटी बोटी काटने के लिए आ रही है, और बच्चा इधर उधर फड़फड़ाता है, और ये साफ दिखाई देता है। हमने उनको दिखाया, वो रोने लगे, उनकी आंख से आंसू आने लग गए। उस दिन से उन्होंने बंद कर दिया और कहा कि ये पिक्चर मैं सब जगह जाके दिखाने वाला हूं। अब वो खुद ऐसे करते हैं, और वो बता रहे थे कि एक बार वो कोल्हापुर आए थे उनके कार्य का कोई प्रदर्शन करने के लिए, और वो दिखा रहे थे, और वो कैमरा में दिख रहा था कि क्या हो रहा है बच्चे का। और जैसे वो गर्भपात कर रहे थे तो 6-7 डॉक्टर थे, और उनमें से एक डॉक्टर कहने लगा, उसको अचानक कुछ हो गया, कहने लगा अरे ये तो जीवित बच्चा है, इसको मारो नहीं, बंद करो, देखो हिल रहा है बच्चा। और बाकी लोगों ने सब उनको चुप करा दिया। ये अवस्था है। जो भी आदमी है जो उसको लगता है कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन बाकी समझ आके उसको चुप करा देती है। जो सत्य बात कह रहा है, आंखों के सामने जो दिख रहा है उसको भी नहीं मान रहा है। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा बचपन में, जब वो राजा चल रहे थे बिना कपड़े के, बहुत कुछ एक ऐसी अवस्था कर देते हैं कि लज्जित कर देते हैं बड़े लोगों को, है ना। कोई अतिथि आए हैं घर में, उनके सामने कुछ बोल देते हैं, और जो माता पिता हैं बड़े लज्जित हो जाते हैं कि उनके सामने क्या कह दिया इसने, है? तो बच्चों की आदत होती है, वो देखते नहीं है, वो सीधा जो देखते हैं सो बोल देते हैं। हम किसी के घर में गए अतिथि बनकर, हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगा, सीधा मुंह पे बच्चा आके बोल देगा। ये मासूम बच्चा है, फिर निर्मल हृदय है, हृदय में कोई द्वेष नहीं है। तो बच्चे ने कह दिया, अरे ये तो कपड़े नहीं पहने हैं, सब जगह घोषित करने लगा, सब लोग चुप चुप कराने लगे उसको, है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में जो सच बात बोलना चाहता है सब उसको चुप कराते हैं। ऐसे डॉक्टर भी क्यों ना, कोई भी बोल रहा हो सब चुप कराते उसको। असत्य को आगे बढ़ाना है, जो झूठ है, झूठ असत्य में वजहते, सत्य में वजहते नहीं, असत्य में वजहते। केवल हम वो सत्य में नारा लगाने में हम लोग एक्सपर्ट है, निपुण है। जो स्लोगन हमें चाहिए अलग अलग जगह से, स्लोगन लगाने के लिए पक्का है हम लोग, लेकिन जहां सच्ची बात आती है, सत्य की बात आती है, वहां आंख ढकने के लिए भी हम निपुण हैं। यही हमारा इतिहास है, और यही झूठ बात हर जगह फैल रही है। और लोग किताबें लिखी, आश्चर्य की बात, लोग किताब लिख रहे हैं इसके ऊपर कि क्यों गर्भपात करना चाहिए, और इनका विरोध हो रहा है। हर एक धर्म में गर्भपात का विरोध है, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, गीता में, सब जगह आप देखेंगे इसका विरोध है। क्योंकि हर धर्म का मतलब यह है कि वो जानते हैं कि भगवान का अधिकार जीवन पे होता है, केवल भगवान का अधिकार, हमारे ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए यहां पर जन्म के समय क्या कष्ट होता है ये लोगों को जानना चाहिए। जन्म के पहले बच्चे के भीतर क्या, माँ के गर्भ के भीतर क्या होता है, ये जानने से लोग अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि गर्भपात जो है ये नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जन्म के समय बच्चे भीतर माँ के गर्भ में भी कष्ट होता है, उसी समय उसी तरह से मृत्यु के समय भी कष्ट होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये चार दुखों का दर्शन जो व्यक्ति करता है वो वास्तव में बुद्धिमान है और वो ज्ञानी कहलाता है। इसलिए हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमें छुटकारा दिलाएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। ये शंकराचार्य की प्रार्थना है, भक्त के रूप में जो उन्होंने प्रार्थना की है। और क्या कहते हैं कि बारंबार ये अलग अलग जननी के, जननी अर्थात माँ, माँ के जन्म में बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से माँ के गर्भ में लेट जाना, फिर से वही बात। यह संसार का कष्ट बहुत ही भयंकर है हे प्रभु, इसलिए इससे मुझे पार कर दीजिए। पाहे मुरारे, हे कृष्ण ये संसार के सागर से मुझे उठाकर ले जाइए। तो इसलिए हमें जानना है कि हमारे संसार में जो भी अवस्था हो, चाहे हम अमीर हो, गरीब हो, बड़े हो, छोटे हो, उतनी ही दर्ददायक है। इसलिए ये संसार में सुख की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति में मन लगाकर हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए, और जन्म मृत्यु के चक्कर से हटकर भगवान के धाम में लौट जाना चाहिए। और ये लोगों को बताना चाहिए जो गर्भपात कर रहे हैं कि जो लोग अभी गर्भपात करेंगे उनको माँ के गर्भ में जन्म लेकर उनको भी वही, उनकी भी वही हालत होने वाली है। जो अभी वो कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, उनको उनकी भी वही हालत होने वाली है। ये बात समझाकर हमें ये बात को फैलाना चाहिए धीरे धीरे से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। 20 मिनट आपको बताई, वैसे बहुत लंबी बात है और बहुत कुछ बातें हैं इसमें। आपके कोई प्रश्न इत्यादि कोई है, लेना होता है, जो भी उसमें भागीदार है सबको पाप का फल लेना चाहिए होता है गर्भपात में। जैसे मांसाहार में भी जो पशु की हत्या करने के लिए अनुमति देता है, जो पशु की हत्या करता है, जो मांस को ले जाता है, मांस को पकाता है, मांस को फिर टेबल के ऊपर आपको दे देता है, और जो खाता है, सब भागीदार है इसमें। उसी प्रकार से गर्भपात के लिए भी जो माता है, जो पिता है, जो डॉक्टर है, जो नर्स है, सब सब भागीदार हो जाते हैं। हमारे विद्यार्थी जो है, विशेषतः जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमडी करते हैं एमबीबीएस के बाद में, जो गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए, उनके लिए ये अनिवार्य होता है कि वो सब करेंगे। लेकिन हमारे भक्त हैं, ऐसे 2-3 भक्त हुए हैं जिन्होंने मना कर दिया कि हमारे धर्म के खिलाफ है, हम ये नहीं करेंगे। वाइस चांसलर तक बात पहुंच गई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट धमकी दी, हम फेल कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे हो तो, लेकिन हम नहीं करेंगे। और मानना पड़ा उनको बात। और एक क्रिश्चियन लड़की भी थी, इन्होंने ऐसा किया, हमारे भक्त थे संस्था के और एक क्रिश्चियन लड़की थी। क्योंकि हम भी करेंगे, हम उस रहे, हम कमरे में भी नहीं जाएंगे, उस कमरे के अंदर हम भागीदार नहीं बनेंगे इसके, ऐसे घोर पाप के। लेकिन सरकार के पास भी ये ज्ञान नहीं है, इसलिए फैमिली प्लानिंग के नाम पे कितने सारे गर्भपात कर रहे हैं। हाँ, प्रश्न ये है, गर्भ निरोधक दवाइयों की बात है, ये भी पाप है वास्तव में, क्योंकि जीव है जो वीर में होता है, उसको उसका अधिकार है कि उसे भी मां का गर्भ मिले। कि जब हम वो रोक देते हैं तो वो भी गर्भपात की तरह ही है, सेम श्रेणी में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई कम श्रेणी की बात है, जितना पाप गर्भपात में होता है वही बात है इसमें। केवल इतना फर्क है कि गर्भपात में ज्यादा दर्द हम दिलाते हैं, शरीर मिलता है, ज्यादा विकास हो जाता है शरीर का, इसलिए दर्द ज्यादा होता है। लेकिन गर्भ निरोधक जो भी दवाइयां हैं, ये भी पाप है, स्पष्ट रूप है। और चर्च, कैथोलिक चर्च भी यही बात कहती है, उनके पश्चिम देशों में तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक नहीं, ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है। लेकिन जहां तक हमने सुना, उनके पोप भी आजकल कहते हैं कि नहीं नहीं ये भी ठीक है, दवाइयों की हम अलाउ नहीं करते। तो प्रभुपाद ने तो इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। बात यह है कि हमें लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आगे लेना चाहिए, इस शिक्षण देना चाहिए कि किस प्रकार से इंद्रियों को वश में करें। जब तक ये शिक्षण उनको नहीं देंगे, तब तक हमारी बातें केवल बातें ही रह जाएंगी। इनको इंप्लीमेंट करना, इनको उतारना जीवन में असंभव हो जाएगा। ये बातें समाज में लोगों के लिए बहुत अद्भुत लगती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्ची बात को बताना चाहिए लोगों को। पूछ रहे फैमिली प्लानिंग को ऑपरेशन भी ठीक है, वो भी उसी बात है, वही बात है कि हम भोग करना चाहते हैं आनंद, संसारी सुख लेना चाहते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी उस सुख के साथ आती है उसको नहीं लेना चाहते हैं, है ना? क्योंकि बच्चे को बड़ा करना बड़ा कष्ट है, बड़ा कठिन होता है। एक बच्चे को बड़ा करने में आप सब जानते हैं कितना कष्ट होता है माता पिता को, माता पिता को ही नहीं सभी को होता है। तो वो चाहते हैं कि हम आनंद लें, सुख लें, लेकिन जो कष्ट आएगा बाद में बच्चे को बड़ा करने में, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? ये भगवान के कानून के खिलाफ है। ये सारे चीजें मना है, इसलिए हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में हम नहीं करते हैं। जब हम डॉक्टर की इंटरव्यू कर रहे थे, हमने एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दिया था पेपर में अलग अलग ब्रांच के लिए, जो कान के स्पेशलिस्ट हैं और जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, जो लेडीज रोग के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए भी हमने एडवर्टीजमेंट दिया था। जब इंटरव्यू हो रहा था तो विशेष मैं हम भी बैठ गए थे उस इंटरव्यू में, हम सबको पूछ रहे थे कि आप हमारी ये पॉलिसी है, हम ये हमारे हॉस्पिटल में नहीं करने वाले हैं, गर्भ निरोधक दवाइयों का एडवाइस भी नहीं देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, देने की बात दूर है, हम बात भी नहीं करेंगे इसके बारे में, गर्भपात बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये भी सारे ऑपरेशन हैं फैमिली प्लानिंग के, ये भी हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको मंजूर है क्या? 50% लोगों ने कहा नहीं मंजूर है, और बाकी जो है वो कह रहे थे ठीक है गर्भपात नहीं करेंगे। हमने ये भी कहा था कि आप पार्ट टाइम हमारे हॉस्पिटल में आएंगे भी तो बाहर आपके प्रैक्टिस में भी आपको बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बंद कर दिया बाहर जाकर वही काम किया तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो ठीक नहीं है कि यहाँ एक मुख दिखा रहे हैं बाहर जाके दूसरा मुख दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आपको बाहर भी बंद करना होगा अगर हमारे हॉस्पिटल में आप आएंगे तो। उन्होंने कहा ठीक है हम गर्भपात बंद कर सकते हैं लेकिन अन्य चीज़ें हम नहीं बंद कर सकते क्योंकि देश को बचाना, अरे आपको देश ने बचाने का ठेका लगा है, देश को कैसे बचाना है आप समझिए पहले, देश को बचाने का क्या मतलब, ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं सब। और वैसे भी उनको देश को बचाने की इच्छा है क्या, क्योंकि गर्भपात से इतना पैसा मिलता है इसलिए करना चाहते हैं, लेकिन सामने आके बोलेंगे देश को करना है, देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, देखिए इतना सब क्या कहे, स्पष्ट कह दिया कि कोई नहीं, इतने सारे लोग इंटरव्यू कर दिए, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं मिला ठीक से, और आखिर में जो एक्सपर्ट थे जो हमने बुलाया था, ये जो इंटरव्यू ले रहे थे हमारे साथ में, वही हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन हो गए। जो इंटरव्यू ले रहे थे बाहर से आए थे, उन्होंने देखा कि अरे ये लोग इतना जोर दे रहे हैं इसके ऊपर, बाद में आकर कहा कि मैं ही खुद आ जाऊंगा हॉस्पिटल में, अपना प्रैक्टिस सब छोड़कर वो आ गए। वो आश्चर्यचकित रह गए कि किस प्रकार हम लोग इतना जोर दे रहे थे इस बात के ऊपर, और अन्य लोग ये डॉक्टर भी सब जगह जाके बोल रहे हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, उनके समाज में डॉक्टर डॉक्टर के समाज जाके अरे ये क्या बोल रहे हैं ये सब, क्या संभव है क्या? जैन लोग भी नहीं करते हैं अपने धर्म, उनके धर्म के अनुसार, लेकिन बाकी सब करते हैं। प्रभुपाद ने इस विषय के ऊपर अपने ग्रंथों में बहुत लिखा है, गर्भपात के ऊपर बहुत बार 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 हर एक किताब में हम देखते हैं कोई ना कोई पॉइंट आता है इसके ऊपर, क्योंकि इतना फैला हुआ है ये सारे समाज में, नाना प्रकार के कारण देते हैं। श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।